السلام علیکم، یہ پارٹ 29 ہے ناول کال بیل حصہ دوم۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جاری ہے۔ آواز کمل خلیل، پیشکش کتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل۔ مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 29۔ اکا باغیا کے کہنے پر تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ انہوں نے میری بات ختم ہونے پر سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میری حالت اس شخص کی سی ہے منی دادا، جو اندھیرے میں ہاتھ پاؤں چلاتا ہے۔ عصمت آپا والے واقعے کے بعد میں بہت خوف زدہ ہوں۔ میں اینی آپ کو یا اماں وغیرہ کو قطعی نہیں کھونا چاہتا۔ میں ان مکڑیوں کا وجود مٹا دینا چاہتا ہوں جو اب آپ میں سے کسی کی طرف بھی بڑھنا چاہے۔ تمہارے خیر میں شادی سے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تم نے شادی انیتا سے کی ہے، زیوسا سے نہیں۔ جی، اکا واگیا کی باتوں سے تو یہ تاثر ملتا ہے جسے اس نے تمہیں زیوسا سے شادی پر مجبور کیا ہے۔ انیتا کا آخری ان واقعات سے کیا کنٹرول ہے جو اس سے شادی تمہیں عذابوں سے بچاؤ کا طریقہ لگ رہی ہے؟ ضیا، مجھے ڈر ہے کہ تم اکا باغیا کے ہاتھ میں کھلونا بن گئے ہو۔ تم تو بہت سمجھدار آدمی ہو، مجھے تم سے کسی بھی بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اس شادی پر مصر کیوں تھا، شادی کے بعد خوش کیوں ہوا، اور اگر یہ سب کچھ اس نے کسی بھی اعتبار سے تمہارے لیے بہتر کیا تھا تو وہ تم سے اپنی آزادی کا طلبگار کیوں ہوا؟ اگر وہ کسی کی قید میں تھا تو کیا وہ تم تھے یا تم ذمہ دار تھے؟ قید سے آزادی تو وہی دلا سکتا ہے نہ جس نے اسے قید کیا ہو۔ تم نے تو بقول تمہارے اس شکل کے بوڑھے کو خواب میں دیکھا تھا، وہ صدیوں سے آزادی کا خواہش مند تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کس کی قید میں تھا؟ میں حیرت سے منی دادا کی باتیں سن رہا تھا۔ ان کے منہ سے نکلا ہر حرف سچا تھا، بہت وزن تھا ان کی بات میں۔ میں نے یہ سب پوری طرح سوچا ہی کب تھا۔ کبھی کبھی جو سوال میرے دماغ میں آتے اور جاتے رہے وہ یہی سب سوال تھے، مگر میں نے ان پر توجہ ہی نہ دی تھی۔ ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے کی تگ و دو کرتا تو شاید سب کچھ پا لیتا۔ سب سے اہم بات، منی دادا نے کھنکار کر مجھے اپنی جانب متوجہ کیا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے تم سے کہا کہ اسے اور سب کو آزاد کر دو۔ کون سب؟ تم نے جاننے کی کوشش کی تھی؟ اس نے رابرٹ، پپا، سورن سنگھ اور جینو پاپا کا ذکر کیا، تو کیا تمہیں خیال نہیں آیا کہ وہ انہیں کیسے جانتا ہے؟ اور کیا وہ جن سب کی آزادی کا مطمئن ہے وہ تمہیں اور چند دوسرے لوگوں کو آزاد بھی کر دے؟ زنجیرے اسے دیکھ کر تم نے یقیناً اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کر لیا ہوگا۔ مگر ضیا، سوچو تو کہ اگر کوئی موت کو پسند کرنے لگے، تباہیوں پر ترس کھانے لگے تو کیا ہوگا؟ عذابوں سے پیار کا جواب کیسے ملے گا؟ موت زندگی کا دوسرا عکس ہے، یہ دونوں ایک ہی رخ پر اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا خیر کرے ضیا، تم اگر مجھے کسی قابل سمجھ کر یہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے کوئی مشورہ کرتے تو میں قطعی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تم نے زنجیریں زیوسا کے حوالے کی تھی تو اس وعدے پر کرتے کہ وہ تم سے بلکہ یہاں سے دور چلی جائے، وتسلا آج بھی روتی ہے۔ تم اس کی حالت دیکھو گے تو لرس اٹھو گے۔ وہ بھی زیوسا کی شکار تھی، شالی بابا وظائف میں لگے تھے، انہیں امید تھی کہ جلد ہی کوئی لاہے عمل سامنے آ جائے گا۔ تم نے ضیا، تم نے جلد بازی سے کام لیا۔ کل مجھے شالی بابا سے ملنا تھا مگر अब मैं खुद में हिम्मत नहीं पाता, क्या मुंह लेकर जाऊंगा। वो मेरी खातिर, हम सब की खातिर बिन बास लिए बैठे हैं, दिन रात चिल्ले काट रहे हैं। इन्होंने हमारी वजह से ही जीनू को कैद कर रखा है, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे लिए मजीद अजाब न बन सके। इसे भूखा रहते हुए तकरीबन महीना हो गया है। तुम तसव्वुर कर सकते हो कि जिस शख्स के मुंह को इंसानी गोश्त लग चुका हो, इसे महीने भर तक भूखा रखना कितने हौसले की बात है, कि जाने कब इसका दाव चल जाए और वो सबको चीर फाड़ कर रख दे। इसका सबसे पहला शिकार खुद शाली बाबा हो सकते हैं। मुन्ने दादा की बातें मेरे हौसले पस्त कर रही थी। इस वक्त मेरे दिमाग में अक्का बागिया की आवाज यूं गूंज उठी जैसे वो मेरे करीब ही बैठा सरगोशी कर रहा हो, अपने जिद को रोको, वो बेवकूफियां कर रहा है। मुन्ने दादा, मैंने इनकी आंखों में आंखें डाल कर इन्हें आवाज दी तो इन्होंने चौंक कर मुझे देखा, यूं जैसे मेरे लहजे में हजारों बिच्छू सरसरा रहे हों जिन्होंने मुन्ने दादा को डंक मार दिया हो। जिया, क्या बात है? शाली बाबा क्या कर रहे हैं? जीनू कहाँ है और आप? अब सारी बातें फजूल हैं जिया, दुआ करो वो खैरियत से हो, मुन्ने दादा ने परेशान होकर जवाब दिया और कमरे से बाहर चले गए। मेरे कतई समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। इसी रात हम सब आंगन में बैठे थे। मुन्ने दादा अभी अभी इशा की नमाज से फारिग हुए थे जब से मेरी इनसे बात हुई थी। इस वक्त से वो सख्त मस्तरब थे। मैंने जब भी इनसे वजाहत तलब करना चाही वो कतरा कर निकल गए, मगर इनके अस्तराब का इजाफा इनके अंदर जलजला सा पैदा किए हुए था, बल्कि मुझे लग रहा था कि बस वो अब फटे के तब। बहरहाल हम सब बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुन्ने दादा दरवाजे के करीब से गुजर रहे थे कि अचानक थटक उठे, क्या वक्त हुआ है? इन्होंने दरवाजा खोलने से पहले तेजी से पलट कर मुझसे पूछा। 9 बजने वाले हैं, मेरी बजाय तैयब ने जवाब दिया। मैं मुन्ने दादा को देख रहा था, यूं लगा था जैसे वो किसी के मुंतजर हों। मुन्ने दादा ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया, मगर फिर मैंने इनके चेहरे का रंग सफेद होते देखा। वो दरवाजे के करीब ढहते चले गए। हम सब चीख कर आगे बढ़े। जो ही मेरी निगाह आने वाले पर पड़ी, मेरा मुंह खुल गया मगर आवाज हलक में ही कहीं अटक कर रह गई। हाँ, मेरी आवाज हलक में अटकी रह गई थी, इसलिए कि शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हैरत से चीख पड़ूं या खुशी से नारा लगाऊं। क्या आप यकीन करेंगे कि मेरे सामने जीनू खड़ा था? हाँ, वो जीनू पापा रेको, वो इटालियन लड़का जिसे मैंने जानवरों की तरह चारों हाथ पैरों पर चलते देखा था, वो जिसके मुंह को खून लग गया था, वो जो खून पर रो रो कर मुझसे मदद मांगता था, वो जिसने बताया था कि इसका जिस्म सुकड़ कर रॉबर्ट के जिस्म की तरह का होता जा रहा है। मैं आज इसे यूं भरपूर जवान के रूप में खड़ा पहली बार देख रहा था, मगर मुझे 100% यकीन था कि ये जीनू ही है। वो मेरे सामने साख्त खड़ा था। इसके चेहरे पर तश्वीश और घबराहट भी थी, शायद वो मुन्ने दादा के गिर जाने पर परेशान था। मुन्ने दादा की तरफ तो मैं भी लपका था, मगर जीनू को पहचानते ही मैं दादा से बेखबर हो गया था। तुम जीनू हो ना? जीनू पापा रेको? जी जी, मैं ही हूँ, वो अंग्रेजी में बोला था, मगर तुम तो। मुन्ने दादा ने अब खुद को किसी हद तक संभाल लिया था। आपको क्या हो गया है? वो झुक कर दादा से पूछने लगा। अब तैयब इन्हें सहारा देकर उठा रहा था। तुमने शाली कहाँ है? दादा अब भी घबराए हुए थे। वो तो यहाँ नहीं है, नेपाल जा चुके हैं। मिस्टर जिया, मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जिन्होंने मेरे दोनों हाथ थाम लिया। अचानक इसकी निगाह अनीता पर पड़ी। वो बड़ी जोर से उछला और फिर हमें देखते इसने अनीता के सामने सर झुका दिया। अजीम देवी, बेशक ये जिया का कारनामा है, ये इसी का हौसला है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा और जिया साहब का जिंदगी भर मशकूर रहूंगा। मैंने हैरत से ये मंजर देखा था। अनीता के चेहरे पर बड़ी नरम मुस्कुराहट थी। वो जीनू को ऐसे देख रही थी जैसे इसके सर पर शफकत का हाथ फेरना चाहती हो। तुम बेकसूर हो जीनू, मैं मजबूर थी वरना। अनीता ने इतना ही कहा था कि तैयब ने इसे चौंका दिया। भाभी, आप इसे जानती हैं? वो बुरी तरह उछल पड़ी। नहीं, कौन हो तुम? और फिर जीनू ने हैरत से इसे देखा। मुझे लगा जिससे लम्हा भर को जीनू साख्त हो गया हो। इसकी आंखें अनीता को अनीता की आंखों में गड़ी थीं। फिर जीनू किसी रोबोट की तरह मुड़ गया। नपे तुले कदम उठाता हुआ वो बड़ी सड़क की तरफ जाने लगा। मैं पहले से देखता रहा, फिर उछल कर इसके पीछे भागा। जीनू, जीनू, मेरी बात सुनो जीनू, ये क्या है, क्या है ये सब? वो बिल्कुल ऐसे चौंका जैसे गहरी नींद से जगा दिया गया हो। ओ मिस्टर जिया, तुम हैरत अंगेज इंसान हो, बहुत हैरत अंगेज। तुम कैसे ठीक हो गए? शाली बाबा कहाँ हैं? शाली बाबा को भूल जा जिया, वो शख्स दिल में लालच लिए था। वो जीवसा की ताकत को काबू करने के अमल कर रहा था। शैतान वही हमला करता है जहाँ वो कमजोरी पाता है। उन्होंने मुझे इसीलिए कैद कर रखा था, सिर्फ इसलिए कि जीवसा मेरे जरिए इन तक पहुँच सके। मगर वो नहीं जानते थे कि जीवसा तुम्हारे पास है। जिया, मुझे यकीन है कि अब वो रॉबर्ट के पास गए होंगे। मैं हैरत से इसकी बातें सुन रहा था। शाली बाबा मेरे हिसाब से मेरे मामले में नाकाम जरूर रहे थे, मगर वो जो थे इसके बिल्कुल बरअक्स होंगे, इसका तो मुझे गुमान भी नहीं था। जीनू को मैं जिस हालत में इनके पास देख चुका था, ये राज फाश होने के बाद कि जीनू को इन्होंने कैद कर रखा है, जो हालत इनकी हुई थी वो याद आया तो लगा जैसे जीनू सच बोल रहा है। सच है, शैतान इसी आस्तीन से हमला करता है। ऐसे ही गैर महसूस अंदाज में आदमी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है कि ना वो कुछ सोच पाता है और ना ही इसे समझने का मौका मिलता है। शाली बाबा भी इंसान थे, वो भी इस शैतान की गिरफ्त में आ सकते थे। जिया, ऐसा ना हो कि वो रॉबर्ट को भी अपने शिकंजे में फांस ले। जल्दी करो जिया, इसे तुम ही बचा सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ जीनू? मैं बौखला गया। तुम सब कुछ कर सकते हो जिया, तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। जाओ जल्दी करो, देखो ये एक नया अजाब होगा। जो कुछ हमने किया इसे भुगत चुके हैं। ऐसा ना हो कि जो कुछ हमने नहीं किया इसकी पादाश में हमारी उम्र ही गुजर जाए। वो सिर्फ रॉबर्ट को ही नहीं, सबको अपनी दस्तक में रखना चाहते हैं। मैं अभी शशपंज में ही था कि मुझे अपने पीछे आहट महसूस हुई। जिन्होंने ने भी मेरी पुश्त पर किसी को देखा था। मैं पलटा, मेरे सामने मुन्ने दादा खड़े थे। जिया, ये झूठ बोलता है, इसने जरूर शाली बाबा को कोई नुकसान पहुंचाया होगा। मुन्ने दादा ने ऐसे लहजे में कहा कि मैं भौंचका होकर मुन्ने दादा को देखने लगा। लेकिन मुन्ने दादा, आप देख रहे हैं कि ये जीनू है, वो जीनू जो जानवर की सी हालत में रहता था, आज ये अपने पैरों पर खड़ा है। मेरा ख्याल है कि झूठ नहीं बोल रहा, झूठ बोलने में इसका कोई फायदा नहीं है। मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहा है, वो धाड़े, मैंने हैरत से ने देखा, मैं इसे तबाह कर दूंगा, नष्ट नाबूद कर दूंगा, पहले से भी ज्यादा बदतर हालत को पहुंचा दूंगा। वो बिल्कुल ऐसे चीख रहे थे जैसे आपे से बाहर हों। मुझे इनका रवैया और इनकी बातें हैरान कर रही थीं। इन्हें तो जीनू को ठीक देखकर खुश होना चाहिए था। जिया, ये बुड्ढा शारी बाबा का दस्त रास है, जीनू ने खौफजदा से अंदाज में कहा और उल्टे पैरों मुझसे दूर होने लगा। होश में रहो जीनू, मैंने इसे डांट दिया, ये मेरे दादा हैं। नहीं नहीं जिया, तुम धोखा खा रहे हो, नुकसान उठाओगे जिया, धोखा है ये सब, वो ये कहता हुआ पलट कर भाग खड़ा हुआ। मैं इसे हैरत से देख रहा था। अचानक मुझे अपने पीछे अजीब सी आवाज महसूस हुई। मैंने पलट कर देखा, मुन्ने दादा आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहे थे। इनके बूढ़े चेहरे की खाल यूं लरस रही थी जिसे अंदर कहीं जलजला आया हुआ हो। मुन्ने दादा, मैंने लपक कर इन्हें थाम लिया। मेरे थामते ही ऐसा लगा जैसे मैंने किसी जिंदा वजूद को ना थामा हो, बल्कि वो सिर्फ एक जिस्म हो, बेजान, ठंडा और भारी। मैंने इन्हें उठा लिया और घर की तरफ मुड़ा। जीनो मेरी निगाहों से ओझल हो चुका था। दरवाजे पर तैयब बिल्कुल साक खड़ा था जिसे पत्थर का बन चुका हो। अम्मा को एहसास हुआ कि मुन्ने दादा ठीक नहीं है। वो चिल्लाए, ए तैयब, देख तू। और तैयब झुरझुरी लेकर मेरी तरफ लपका। अनीता ने भी बाहर आने को कदम बढ़ाया ही था कि अम्मा ने इसका बाजू पकड़ लिया। मैंने और तैयब ने सहारा देकर मुन्ने दादा को इनके कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया। मुन्ने दादा जिंदा थे इसका अंदाजा मैंने इनके सीने के जेरो बम से लगा लिया था। इनके होंठ साक थे मगर इनका चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था। चेहरे के तासरा से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शदीद अंदरूनी करब में मुब्तला हैं। अम्मा से मैंने घर में दाखिल होते ही कह दिया था कि आप मुन्नी दादी को अंदर ले जाएं, इन्हें पता न चले। अम्मा लपक कर बरामदे में चली गई थी ताकि वहाँ बैठी मुन्नी दादी को किसी बहाने अंदर ले जाएं और घर में वावेला ना मचे। अम्मा बड़ी हिम्मत वाली थी, इनकी ये खूबी रह रहकर सामने आ रही थी। असमत आपा पत्थर से इंसान बन चुकी थी, इनकी आंखें नम थीं। वो बड़ी बेकरारी से हमारे साथ कमरे तक आईं और बार बार तैयब से पूछ रही थीं, क्या हुआ मुन्ने दादा को, क्या हुआ है। कुछ नहीं असमत आपा, ये अनीता थी, आइए हम अंदर चलें, इन्हें अकेला छोड़ दें जिया। वो भी मेरी तरफ पलटी, प्लीज इन्हें अकेला छोड़ दें। मैंने हैरत से अनीता को देखा, कैसी बातें कर रही हो तुम, इस हालत में इन्हें अकेला कैसे छोड़ा जा सकता है। जिया, मैं आपसे कह रही हूँ ना, अनीता ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। वो लम्हे का हजारवां हिस्सा था कि मेरी निगाहें इसकी निगाहों से मुतसादिम हुई थी और मेरे बदन में चूटियां सी रेंग गई थीं। फिर मुझे नहीं पता, मैं कमरे से बाहर निकल आया था। मैंने सुना वो तैयब को भी चले जाने को कह रही थी, फिर शायद हम सब ही इसके साथ इस कमरे में आ गए जहाँ अम्मा मुन्नी दादी को लिए बैठी थीं। मुन्नी दादी अम्मा के लिए पान लगा रही थीं और पूछ रही थीं, हुआ क्या, ये लड़का कौन था। पता नहीं अम्मा, मैंने तो पहली दफा देखा है, अम्मा ने मुंह बनाकर कहा। इसी वक्त हम लोग अंदर दाखिल हुए। अम्मा ने सर उठाकर हमें देखा और आंखों ही आंखों में मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कोई जवाब नहीं दे सका, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पलट कर मुन्ने दादा के पास चला जाऊं। फिर भी कोई अनदेखी ताकत थी जो मुझे ऐसा करने से रोक रही थी। अम्मा, सब ठीक है, आप लोग यहीं बैठें, मुन्ने दादा खुद यहाँ आएंगे। ये अनीता थी। अजीब बात है कि इसका ये जुमला जिसे आसमान से बरसता हुआ महसूस हुआ था, चारों तरफ से उमड़ कर आता हुआ, हालांकि वो मेरे बिल्कुल बराबर में खड़ी थी, मगर आवाज जैसे बाज़-गश्त बनकर चारों जानिब की दीवारों से टकरा कर सुनाई दी थी। हम सब के सब साक्त रह गए। इस आवाज के सिवा कोई दूसरी आवाज सुनाई नहीं दी और अनीता के चुप होते ही जैसे गहरा सन्नाटा छा गया। ये एहसास मुझे बहुत देर में हुआ कि अनीता कमरे से जा चुकी थी और वहाँ कमरे में मौजूद हर शख्स पत्थर का ना बनने के बावजूद बेजान होकर रह गया है। ये सब क्या हो रहा है? ये सवाल मेरे अंदर गूंजा था, मगर जवाब में गहरा सन्नाटा महसूस हुआ। फिर पता नहीं कितना वक्त गुजरा, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। एहसास इस वक्त हुआ जब अनीता के हंसने और बोलने की आवाज कमरे में दाखिल हुई। हम सभी जैसे ठीक हो गए। मैं एकदम दरवाजे की तरफ लपका। सामने दादा और अनीता खड़े थे, जो इधर ही आ रहे थे। आप कैसे हैं मुन्ने दादा? मुन्ने दादा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ऐसे देखा जैसे मुझे और दूसरे लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। मुन्ने दादा बिल्कुल ठीक हैं जिया, लेकिन अब थोड़ी सी तब्दीली करना पड़ेगी। मुन्ने दादा को वो कमरा दे दें जो नासी चचा के पास था। मुन्ने दादा का कमरा हम ले लेंगे, मगर क्यों? ये बहुत पुराना सेटअप है। और फिर मुन्ने दादा को किसी और कमरे में चैन ही कब आता है? सर्दियों में अक्सर इनसे कहा कि इनके रोशनदान का शीशा टूटा हुआ है, सर्द हवा आती है, आप दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएं, मगर वो नहीं माने थे। अब कैसे मानेंगे? आएगा चैन, अब इन्हें इसी कमरे में चैन आएगा। जिया मैं ठीक कह रही हूँ ना? इसका आखिरी जुमला सुनकर फिर वही हुआ, बदन में चूटियां सी रहेंगी। गहरा सन्नाटा छा गया और हम सब ने एक साथ इसकी हाँ में हाँ मिला दी। मुन्ने दादा किसी रोबोट की तरह चुपचाप बैठे रहे। अनीता बाहर चली गई, हम सब वहीं बैठे थे। चंद ही लम्हों में वो लौट आई। इसके लौटते ही जैसे हम में जान पड़ गई, मगर मेरे जहन में अब भी गहरा सन्नाटा साए साए कर रहा था। आइए मुन्ने दादा, अनीता ने कहा और मुन्ने दादा खड़े हो गए। मैं इनके पीछे गया। तैयब मेरे साथ था और जब हम दोनों इनके साथ ही नाती चच्चा वाले कमरे में दाखिल हुए तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। नासी चचा के जाने के बाद से ये कमरा बंद पड़ा था। धूल अटी हुई थी, इनका सामान भी वैसे ही बंद पड़ा था, क्योंकि बम्बई जाकर उन्होंने वहीं से सामान खरीद लिया था। हालांकि मुन्नी दादी ने कहा भी कि अपना सामान ले जाओ, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था कि इस पुराने काठ कबाड़ का क्या करूँगा। इस वक्त वो सारा काठ कबाड़ बाहर बरामदे में तरतीब से रखा था और वो भी इस हालत में के बिल्कुल साफ सुथरा था। और नासी चचा वाले कमरे में मुन्ने दादा का सामान था। ये कैसे हुआ? मैंने अनीता से पूछा। वो मुस्कुराई। मैंने मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर सब करवा लिया, मगर मोहल्ले के बच्चे तो बहुत मनहूस हैं, मुझे पान तक नहीं लाकर देते। अम्मा पता नहीं कब हमारे पीछे चली आई थी। अम्मा प्यार से कुछ कहो तो बच्चे सब कर देते हैं। आपको पान मंगवाना हो तो मुझे कहिएगा, इन्हीं बच्चों से मंगवा दूंगा, देखिएगा कैसे भागकर लाके देते हैं। मैं हैरान था, मगर बस सिर्फ हैरान था। मेरे जहन में वैसा ही सन्नाटा था, ना कोई सवाल उभरा था, ना हैरत में मुझे बेचैन किया था। तैयब चुप था, बिल्कुल चुप, जो मेरे हिसाब से खिलाफ फितरत था। इसकी नेचर ही कुछ ऐसी थी, मगर इस वक्त कोई भी बात मामूल के मुताबिक नहीं लग रही थी। मुन्ने दादा जो जगह बदलने पर जज बस हुआ करते थे, इस वक्त चुपचाप बिस्तर पर लेट चुके थे। मुन्ने दादा के कमरे में खुद शिफ्ट होने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मगर अनीता ने शाम तक तैयब और असमत के साथ मिलकर मेरे कमरे का सामान वहाँ शिफ्ट कर दिया और मैं खामोश बैठा देखता रहा। यूं लग रहा था जैसे अनीता ने सारे घर पर जादू कर दिया है। वो सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही थी। असमत आपा जैसी पत्थर भी इसके सामने भीगी बिल्ली बनी हुई थी। तैयब की सारी शोखियां धरी रह गई थीं। शिफ्टिंग के मरहले के बाद सब कुछ जैसे नॉर्मल हो गया, सबकी जैसे काया पलट गई हो। सबसे पहले इसका एहसास मुझे इस वक्त हुआ जब असमत आपा तैयब पर चीखी, अब कोई यहाँ से नहीं जाएगा, इसलिए अब तुम चुपचाप सामान उठाकर चलते बनो, समझे तुम? असमत आपा, ये तो मुझे पता है कि जिया नहीं जाएगा, मगर मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। अकेले सफर करने की आदत नहीं रही है ना, तो अब क्या इरादा है? असमत आपा ने भन्ना कर पूछा। मुन्नी दादी को लेकर मेरठ जाऊंगा, इसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। मेरठ वहाँ तुम्हारा कौन है? असमत आपा चौंक उठी। बी जान है ना वहाँ, और फरहत? इसने यूं आसमान पर तका जैसे वहाँ इसका रोशन मुस्तकबिल जगमगाता रहा हो या कोई ख्वाब अड़ रहा हो। ए हे, होश में तो हो। असमत आपा ने इसके सामने हाथ नचाया। बी जान से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, वो हमारी नानी है, तुम्हारी नहीं। और दूसरी बात के फरहत बड़ी भोली भाली लड़की है, मैं तुम जैसे आवारा मजाजों के मुंह से इसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। अरे आपको तो कुछ पता ही नहीं, वो बड़ा लहक कर बोला। हम जैसे लोग ख्वाबों में शहजादे का रूप धार कर आया करते हैं, किन चमारों के ख्वाबों में आया करते हैं ये नहीं बताया तुमने? खैर ये मैं जानती हूँ, तलवे की माँ दो मर्तबा पूछ चुकी है तुम्हारा, मैं भी हैरान हूँ कि वो क्यों पूछ रही है। अरे वो तो इसलिए पूछ रही थी कि मैंने कह दिया था बम्बई घुमा लाऊंगा तलवे को, लेकिन सारी तैयारी तो इसकी माँ ने पकड़ी हुई है, तलवा तो कुल्ली कल लग गया है, अब वो कहीं नहीं जाएगा। असमत आपा ने चावल की सैनी लाकर अम्मा के सामने रखते हुए कहा। अरे तुम इतना बोलती क्यों हो? तैयब अब जल गया था। अनीता हंस रही थी। मुन्ने दादी मुन्ने दादा के पास थी। अम्मा असमत आपा को घूर रही थी। होकाए इसे बोलने का तुम ख्याल ना करना। अम्मा अब तक असमत आपा को गुस्से से घूर रही थी। बांछें फैलाकर तैयब से कहा, पता नहीं ये झुक झुक कर कब तक चली, मैं थकन महसूस कर रहा था इसलिए अपने कमरे में चला गया। ये थकन भी अजीब सी थी, ठंडी ठंडी जैसे अंदर बर्फ जमी हो। याद रखिएगा कि अब मेरा कमरा वही था जो अब से पहले मुन्ने दादा का था। बिस्तर पर लेटते ही मुझे लगा जैसे मैं किसी सख्त से पलंग पर रस्सियों से जकड़ दिया गया हूँ। जहन एकदम सुन हो गया, हाथ पांव बेजान होकर रह गए। मुझे नहीं पता कि मैं सोया या यूं ही जागा रहा। रात धीरे धीरे आंगन में उतरी तो मेरे हवास काम कर रहे थे, बाहर चहल पहल की आवाजें आ रही थीं। फिर अनीता मेरे पास आ गई। इसके कमरे में आते ही वो ठंडा ठंडा सा एहसास खत्म हो गया। मैंने अपने आप को चाको चौबन महसूस किया। अब ठीक है ना आप? अनीता ने बड़े प्यार से पूछा। हाँ अनीता, मैं रॉबर्ट के पास जाना चाहता हूँ, मैं इसी के लिए परेशान हूँ। जिया, मैं आपको अकेला वहाँ जाने का मशवरा नहीं दूंगी। जीनो जो कुछ कह रहा था वो दुरुस्त था, शाली बाबा पर शैतान हावी है, मगर ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो गया है जिया, सब कुछ बदल गया है। मैं चाहती हूँ कि आप अब किसी मामले में ना पड़े। मैं सब कर लूंगी। तुम क्या कर सकती हो? मैंने हैरत से इसे देखा। इसके चेहरे का इत्मीनान मुझे हैरान कर गया। इसके होठों पर बड़ी मायने खैस मुस्कुराहट थी। आपकी तवज्जो, आपका एतमाद हासिल हो तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ जिया, इसने बड़ी वारफ्तगी से कहा। फजूल बातें ना करो, मैं झिल्लाकर बोला। ये सब तुम्हारे बस का नहीं, तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती, मैंने बिस्तर से उतरते हुए जवाब दिया। मैंने नहीं देखा कि मेरे जुमले का क्या रद्द अमल था। मैं कमरे से बाहर आ गया। अनीता मेरे पीछे थी। मैं तैयब से कुछ बातें करना चाहता था। ये नॉवेल कॉल बेल हिस्सा दोम का बकिया हिस्सा पार्ट 13 में समाप्त फरमाएं।